परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
Oh, प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र व मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में याकूब के आशीषों के बारे में देखा था, जो उसने याकूब के पुत्रों और फिर अपने 12 पुत्रों को दिए। आज हम उन्हीं आशीषों में आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति उसका 49 अध्याय और 23 पद से आरंभ करेंगे। तो आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करें और उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 23 से 25 पदों को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धनुर्धारियों ने उस पर भयंकर आक्रमण किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़ गए, परंतु उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी भुजाएं याकूब के शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीली हुई। उसी के पास से वह चरवाहा अर्थात इसराइल का पत्थर आएगा। यह तेरे पिता उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करता है, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर आकाश से आशीष देता है। मित्रों, यूसुफ से दो जातियां उत्पन्न हुई, एप्रेम और मनस्से, जो बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण जातियां बनी। यहां तक कि उनसे ही राज्य का विभाजन भी हुआ। वे इतना ज्यादा शक्तिशाली थे और हम उसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 26 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पूर्वजों के आशीर्वादों से सनातन पहाड़ियों तक अधिक बढ़ गए हैं। वे यूसुफ के सिर पर रहे और उसके सिर के मुकुट पर रहे, जो अपने भाइयों में न्यारा है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि याकूब यूसुफ के उन दोनों जातियों के साथ बांधने या जोड़ने की है जो अभी उससे आने वाली हैं, जो वापस इस परमेश्वर से रचे जाने वाले हैं, अर्थात छुड़ाने वाला है। ऐसा क्यों? बात यह है कि ये जातियां विशेषकर एप्रेम इसराइल को मूर्ति पूजा की ओर ले गई। यरोबोआम जिसने विद्रोह की अगुवाई की और इसराइल की सीमा पर दो सोने के बछड़े स्थापित करवाए, एप्रेम जाति से ही आया था। इसलिए यहां पर अपने मृत्यु शैया पर है अपने पिता के परमेश्वर के पास वापस। अब हम विन्यामिन के विषय भविष्यवाणी को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 27 जहां पर लिखा हुआ है, सवेरे तो वह शिकार को फाड़ खाता है और संध्या उठ लेता है। विन्यामिन के विषय में यह की भविष्यवाणी है, हमेशा यहूदा के साथ या उसके नजदीक में रहा है और वह उसके एक अभिन्न अंग माना जाता है। इतना ही नहीं, परंतु जब राज्य का विभाजन हुआ तब भी वह यहूदा गोत्र के साथ ही गया। मित्रों, बेन्यामिन ही एक गोत्र ऐसा है जो दाऊद के घराने के साथ स्थिर बना रहा। याकूब के अंतिम शब्द और मृत्यु को हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 29 पद में आगे पाते हैं। लिखा है, तब उसने आज्ञा देकर उनसे कहा, मैं अपने लोगों में मिलने पर हूं, मुझे मेरे पूर्वजों के उस गुफा में मिट्टी देना जो हित्ती एप्रोन के खेत में है। मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि याकूब की मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं था। वह अपने लोगों से मिलने के जा रहा है। वह चाहता था कि उसके शव को उस गुफा में दफनाया जाए जिसे इब्राहिम ने खरीदा और उसके लिए दाम चुकाया था। वह इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता था कि वह उस भूमि पर तब तक रहे जब तक कि उसे फिर से न जिलाया जाए, और तब तक वह उस भूमि में रहेगा। उत्पत्ति उसके 49 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है, जिसे इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से कब्रिस्तान के लिए मोल लिया था। यहां पर हम देख सकते हैं कि यह व्यक्ति अपने परिवार के इतिहास को जानता था। मैं नहीं सोचता कि उस समय वह लिखित रूप में कोई दस्तावेज अपने साथ लेकर चल रहा था, फिर भी वह इन सारी जानकारियों को अपने मस्तिष्क में लेकर अवश्य चल रहा था। हम उत्पत्ति उसके 49 अध्याय के 31 पद में आगे पढ़ते हैं, और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, वहां इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई थी, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी है। मित्रों, लिया के साथ दफनाए जाने में उसकी अधिक रुचि नहीं है, जबकि राहेल को बेतलहम में दफनाया गया था, परंतु वह चाहता था कि उसे उस स्थान पर दफनाया जाए जहां से वह पुनरुत्थान के समय जीवित किया जाएगा, और जब परमेश्वर अपने वायदे को इसराइल देश के लिए पूरा करेगा तो वह भी वहां पर होगा। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 32 और 33 पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह भूमि और वह गुफा जो उस भूमि में है हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है, जब याकूब अपने पुत्रों को आज्ञा दे चुका तब उसने खाट पर अपने पैर समेटे और प्राण त्याग दिया और अपने लोगों में जा मिला। मित्रों, यह बहुत ही रुचिदायक बात है कि याकूब ने अपने मरने के समय तक अपने पैरों को भूमि पर ही रखा। उसने अपने जीवन का आरंभ एक सांसारिक मनुष्य के रूप में किया। जन्म के समय उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ी थी, इसलिए उसे याकूब कहा गया, चालाकी से दूसरे का स्थान लेने वाला। वह अपने नाम के अनुरूप जिया, जो उसके नाम की विशेषता थी। जो कुछ वह पा सकता था उसने उसमें भाग लिया और उसने हमेशा प्रथम होने की कोशिश की। उसने सारे चार पर आरंभ किया और जो वह चाहता था उसे उसने हर तरीके से प्राप्त किया। एक जवान व्यक्ति होने के नाते वह अपने दोनों पैरों, अपने शक्ति और योग्यता पर चला। वह अपने चालाकी और प्रवीणता पर भी निर्भर था। उसने सोचा कि वह अपनी देखभाल स्वयं से कर सकता है और उसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं में पर्याप्त, स्वयं में नियुक्त और स्वग्राही, आक्रामक और अवमान्य और तिरस्करणीय था। पेनियल में परमेश्वर ने उसे लंगड़ा कर दिया था। परमेश्वर को उसे पाने के लिए उसे लंगड़ा करना पड़ा और सोचता हूं कि परमेश्वर उसके गर्दन को भी तोड़ने के लिए तैयार था। इसके पश्चात जीवन भर वह लंगड़ाता रहा। उसे तीन पैर से चलना पड़ा, अर्थात उसे लाठी का या वैशाखी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वह अपने आप से अधिक नहीं चल सकता था। यहां पर वह अपने मरने से पहले खाट पर बैठा है और अपनी लाठी पर टेक लगाए है। अब वह समय आ गया है और वह अपने पैर को खाट पर समेटता है, अपनी लाठी को नीचे रखता है और मरने के लिए खाट पर लेट जाता है। यही याकूब है। उसने अपने जीवन की लंबी यात्रा तय की और वह अपना अंत एक विश्वासी के रूप में करता है। वह उस दिन की प्रतीक्षा करता है कि वह फिर से मृतकों में से उस भूमि में जीवित किया जाएगा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार है। हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराए हैं। मित्रों, यहां पर 49 अध्याय समाप्त होता है, इसलिए अब हम अपने अध्ययन को इस पुस्तक की आखिरी अध्याय अर्थात 50 अध्याय से जारी रखेंगे। यह अध्याय हमें कनान में याकूब को मिट्टी दिए जाने और यूसुफ की मृत्यु और मिस्र में उसको दफनाए जाने के बारे में बताता है। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक का यह आखिरी अध्याय दुख को स्पष्ट करता है। हमने पहले ही मृत्यु पर जोर दिया है जो उत्पत्ति की पुस्तक में है। परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 17 पद में, जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और पौलुस प्रेरित ने भी रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक पाप की वास्तविकता का उदाहरण और मृत्यु की वास्तविकता से भरी है। यह अदन की वाटिका में परमेश्वर और मनुष्य के साथ खुलती है और मिस्र में शव पेटी के साथ समाप्त होती है। यह पुस्तक मानव परिवार के अंदर में पाप के प्रवेश की दोबारा गिनती करती है, परंतु यह मानव के लिए जीवन के मार्ग का प्रबंध करने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी जोड़ता है। कनान में याकूब को मिट्टी देना। हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यूसुफ अपने पिता के मुख से लिपट कर रोया और उसे चूमा। मित्रों, स्वाभाविक तौर पर वह दुखी हुआ क्योंकि वह अपने पिता से प्रेम करता था। हम उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और यूसुफ ने अपने सेवकों अर्थात वैद्यों को आज्ञा दी कि वे उसके पिता के शव पर सुगंध द्रव का लेप चढ़ाएं। इसलिए वैद्यों ने इसराइल के शव पर सुगंध द्रव का लेप चढ़ाया। हम इस बात को जानते हैं कि मिस्री लोग इस प्रकार के कार्यों के लिए बहुत ही अनुभवी और तेज थे। हम मिस्र की मम्मी के बारे में सुनते हैं। उनके पास शव को सुरक्षित रखने की विधि थी जिसे हम लोग आज तक नहीं सीख पाए हैं। इसलिए यूसुफ वैद्यों से कहता है कि वे उसके पिता पर सुगंध द्रव्य लगाएं। मित्रों, हम किसी को दफनाते समय नहीं हंसते हैं, परंतु मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और मुस्कुराया जब मैं उनके सुगंध द्रव लगाने की प्रक्रिया के बारे में सोचकर हंसा जो वे बूढ़े याकूब पर लगाकर उसकी मम्मी बना रहे थे। और मैं मानता हूं कि उसकी मम्मी आज हिब्रोन में है। इस बात को याद रखें कि उसने यह निवेदन किया था कि उसके शव को लेकर मकपेला की गुफा में दफनाए, क्योंकि उसकी आशा सांसारिक थी। जब वह मृतकों में से जिलाया जाएगा तो वह इसराइल देश की भूमि के साथ रहेगा। आज विश्वासियों की आशा है कि जो यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य हैं, वे हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और उस स्थान में जाएंगे जो नया यरूशलेम कहलाता है। दो भिन्न प्रकार की आशाएं हैं और वे दोनों ही महिमापूर्ण हैं। हम उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसमें 40 दिन लगे क्योंकि शव सलनेपन में इतने ही दिन लगते हैं, और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। मित्रों, उन्हें लेप लगाने में कुल 40 दिन लगे और वास्तव में इसे पूरा करने के लिए कई विधियों से होकर जाना पड़ता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्री लोगों ने उसके लिए विलाप किया। मैं नहीं समझता कि यह किसी प्रकार का दिखावटी रोना था, और मैं सोचता हूँ कि वह मिस्र में एक सच्चा और सही संत बन गया था, और संभवतः यूसुफ के पिता के रूप में उसे आदर भी दिया जाता था। यूसुफ छुड़ाने वाला था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय उसका पिता याकूब परमेश्वर का एक सच्चा संत था। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 50 अध्याय और उसके 4-7 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब उसके लिए विलाप के दिन समाप्त हो गए तो यूसुफ ने फिरौन के घराने के लोगों से कहा, यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो फिरौन से कहो, मेरे पिता ने मुझे यह कहकर शपथ दिलाई है कि देख, मैं तो मरने पर हूं और जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है तू मुझे उसी में मिट्टी देना, इसलिए अब मुझे अपने पिता को मिट्टी देने के लिए वहां जाने दे, तब मैं लौट आऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जा और अपने पिता द्वारा दिलाई गई शपथ के अनुसार उसे मिट्टी दे। अतः यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चल पड़ा और उसके साथ फिरौन के सब कर्मचारी, उसके घराने के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये। मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि याकूब मिस्र देश में कितना आदरणीय और सम्माननीय है, जिसे लोग प्रेम करते थे। सिर्फ याकूब ही ऐसा व्यक्ति था और शायद ही संसार में ऐसी लंबी शव यात्रा किसी ने कभी देखी होगी। वह शव यात्रा मिस्र से कनान देश के हेब्रोन तक चली। हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां लिखा हुआ है, और यूसुफ के घराने के सब लोग और उसके भाई तथा उसके पिता के घराने के लोग भी थे। उन्होंने गोशेन देश में केवल अपने बाल बच्चों और अपनी भेड़ बकरियों के झुंडों को ही छोड़ा था। मित्रों, एक अद्भुत बात है, शायद फिरौन ने उन्हें उनके बच्चे और पशुओं को छोड़ने के लिए कहा हो, ताकि वो निश्चित हो जाए कि वे लोग फिर से वापस आएंगे। फिरौन यूसुफ को छोड़ना या खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी भी उसे यूसुफ की आवश्यकता थी। हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 9-13 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, वहां उसके साथ रथ और घुड़सवार भी गए, अतः एक बहुत बड़ा जनसमूह था। जब वे वर्दन के उस पार आतात के खलियान पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी विलाप किया और उसने पिता के लिए 7 दिन तक विलाप किया। जब उस देश के निवासियों अर्थात कनानियों ने आतात के खलियान में भारी शोक होते देखा, तब उन्होंने कहा, यह तो मिस्रियों का बड़ा भारी विलाप है। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रैम पड़ा, जो कि यर्दन के उस पार है, और जैसा उसने अपने पुत्रों से करने के लिए कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया, क्योंकि उसके पुत्रों ने उसे कनान देश में ले जाकर ममरे के सामने मकपेला के खेत की उस गुफा में मिट्टी दी, जिसे इब्राहिम ने हित्ती एप्रोन से भूमि के साथ कब्रिस्तान के लिए मोल लिया था। मित्रों, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों याकूब को राहेल के साथ बेतलहम में मिट्टी नहीं दिया गया या दफनाया गया, जो वहां से संभव था उत्तर की ओर 20 मील की दूरी पर ही था। मैं सोचता हूं कि उसका कारण यहां पर बताया गया है कि इब्राहिम के द्वारा यह भूमि और गुफा खरीदी गई थी और याकूब चाहता था कि उसे उसके पिता के साथ मिट्टी दी जाए उस स्थान पर जिसे खरीदा गया और जिसकी कीमत चुकाई गई है। इसे स्पष्ट करने के लिए वह उस भूमि में रहेगा, इसलिए कि वह भी अन्य पूर्वजों के साथ वहां पर दफनाया गया। उन सब लोगों का पुनरुत्थान के विषय में एक जैसी आशा थी। मित्रों, यीशु अपने भाइयों के डर को शांत या कम करता है। जिसे हम उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 14 से 17 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, और यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देकर अपने भाइयों और उन सब के साथ जो उसके पिता को मिट्टी देने गए थे मिस्र को लौटा। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता तो मर चुका है, तब उन्होंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूसुफ हमसे बदला ले और उसके साथ हमारे द्वारा की गई बुराई का पूरा पूरा पलटा ले। अतः उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पूर्व यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, क्योंकि उन्होंने तेरे साथ बुरा किया था और अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। मित्रों, यह स्पष्ट रूप से सब भाई याकूब के मरने से पहले उसके पास गए और उन्होंने अपने डर को उसके सामने बताया कि उसके मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। उन्हें डर था कि पिता की मृत्यु के बाद यूसुफ उनके विरोध में हो जाएगा और उनसे बदला लेगा। इसलिए याकूब ने उन्हें एक संदेश दिया कि वे यूसुफ से कहें, और उसे पूरा भरोसा था कि यूसुफ उन्हें नहीं सताएगा या उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। जब यूसुफ के भाई इस पश्चाताप के साथ आए तो यूसुफ टूट गया और रोने लगा। अब वे अपने पापों के कारण पश्चाताप कर रहे थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। लिखा है, और उसके भाई भी उसके सामने जाकर गिर पड़े और कहा, देख हम तो तेरे सेवक हैं। मित्रों, आप यहां पर उनके गिरने और दंडवत करने की भविष्यवाणी को पूर्ण होते देखते हैं। हम उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? मित्रों, यूसुफ अपने प्रत्येक कार्य के दौरान परमेश्वर को महिमा देता है। अब यहां पर एक विशिष्ट बाइबल पद है जिसे हम उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। मित्रों, परमेश्वर का उद्देश्य अदृश्य है, जिसे मैं और आप नहीं देख सकते हैं। मैं इस विषय में कितना मानवीय हूं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो मैं अधिक दूर तक नहीं देख सकता, और मैं पूछता हूं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने की अनुमति दी। हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि उनका उद्देश्य अच्छा है। वह आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बातें नहीं होने देंगे जब तक कि कोई अच्छा उद्देश्य आपके जीवन में वो बात पूरा ना करे। अब यूसुफ की सुनिए को क्या कहता है। उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 21 से 23 पद में लिखा है, इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कोमलता से बातें की। अब यूसुफ अपने पिता के घराने सहित मिस्र में रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा, और यूसुफ ने एप्रेम की तीसरी पीढ़ी तक देखी और मनशे के पुत्र माकीर के पुत्रों को भी अपने घुटनों पर खिलाया। मित्रों, मैं इसे इस रीति से लेता हूं कि यूसुफ दादा से परदादा बन गया था। अब हम यूसुफ की मृत्यु और मिस्र में दफनाए जाने के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 24 से 26 पदों में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। तब यूसुफ ने इसराइलियों से यह कहकर प्रतिज्ञा करवाई कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहां से अवश्य ले जाना। तब यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव को सुगंध द्रव्यों से लपेटकर मिस्र देश में एक संदूक में रखा गया। मित्रों, इस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होती है। यह परमेश्वर के साथ आरंभ हुआ और आकाश और पृथ्वी को बनाया, और इसका अंत मिस्र देश में 100 पेटी के साथ होता है। मानव परिवार का क्या हुआ? परमेश्वर की सृष्टि में पाप घुस गया। इस समय यूसुफ को कनान देश में ले जाकर क्यों नहीं दफनाया गया? मैं सोचता हूं कि यह बिल्कुल प्रकट है कि यूसुफ मिस्र की भूमि में एक नायक या हीरो था, और उस समय यूसुफ के परिवार के लोगों को यह अनुमति नहीं दी गई होती कि वे उसके शरीर को वहां से लेकर कहीं और दफनाएं। मैं सोचता हूं कि वह एक असाधारण पूर्वज था जिसे मिस्री लोग आदर देते थे और संभवतः उसके कब्र पर अवश्य कोई स्मारक खड़ा किया गया होगा। परंतु यूसुफ अपने लोगों से कहते हैं, जब तुम कनान देश में वापस जाओ तो मेरी हड्डियों को यहां पर मत छोड़ना। मित्रों, हम यूसुफ के अंदर भी उसी आशा को देखते हैं जो उसके पिता याकूब में थी। यह एक प्रकार का भरोसा था कि परमेश्वर उन्हें कनान देश में सदा की संपत्ति होने के लिए दे देंगे और वे अपनी ही भूमि में मृत्यु में से जीवित होना चाहते थे। यूसुफ ने यह विश्वास किया कि परमेश्वर उसके लोगों को फिर से जिलाएंगे और वे प्रतिज्ञा की भूमि में अधिकार को रखेंगे। इब्रानियों की पत्री में इसे यूसुफ के जीवन में विश्वास के द्वारा किए गए महान कार्य के रूप में बताया गया है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से यूसुफ ने अपने मृत्यु के समय इसराइल की संतानों के निर्गमन की चर्चा की और अपने अस्थियों के विषय में आदेश दिए। मित्रों, निर्गमन 13 अध्याय में हम देखेंगे कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यूसुफ को सम्मान दिया और उसके निवेदनों का उत्तर दिया। मूसा और इसराइल के संतानों ने यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ ले लिया जब वे मिस्र देश छोड़कर निकले तब। मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस अध्ययन से अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु आप सबको इस अध्ययन के द्वारा से बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।